ओम शांति। तो आज से आपके ज्ञान और योग के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है और इस शुभारंभ की वेला में इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित जीवन का स्वर्णिम इतिहास लगभग 50 वर्षों का है। अगले ही वर्ष आपके समर्पित जीवन का गोल्डन जुबली ईयर होगा और इस लंबे काल में आपने अलग अलग स्थानों पर अपनी अनमोल सेवाएं दी है। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, इसलिए सेवाओं की शुरुआत गुजरात से ही की। अहमदाबाद, सूरत, भरूच और विशेषकर बड़ौदा में भी आपने सेवाएं दी है और 14 वर्षों तक भावनगर में ऐसे सब छोन इंचार्ज रहकर भी आपने सेवाएं की। वो सब अनुभवों के साथ 93 में आप ज्ञानसरोवर अकेडमी जब निर्माण कार्य आरंभ हुआ वहां आए और वहां पर लगभग 18 वर्षों तक रिसेप्शन और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ साल भर चलने वाले प्रोग्राम्स का सुचारू संचालन बहुत अच्छे से किया और फिर नीचे शांतिवन में बेहद सेवाएं विस्तार होती जा रही थी। तो फिर पिछले 11 वर्षों से आप शांतिवन में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप देश विदेश में भ्रमण करते रहते हैं सेवाओं अर्थ और कोरोना काल में ऑनलाइन के द्वारा भ्रमण किया आपने और साथ साथ आप हमारे बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, कुशल राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्टी की अनेकानेक टीचरों में से एक टीचर और जितने भी हमारे पास प्रोग्राम होते हैं उन सब में एक विशेष वक्ता के रूप में आपका योगदान होता ही है। तो ऐसी अनुभवी गीता दीदी जिनके नाम से ही गीता का मुख्य संदेश याद आता है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत रख और वो आपके जीवन से चरितार्थ होता है। तो अभी हम आपसे सुनेंगे तपस्या का फाउंडेशन, आत्म अभिमानी स्थिति। आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। मधुबन की तपोभूमि पर जहाँ प्यारे ब्रह्मा बाबा मम्मा और दादियों ने तपस्या की, आप सबको भी ऐसा ही सुंदर मौका मिला है। आबू में घूमने के लिए तो लोग आते हैं पर आप सभी तो तपस्या के लिए आए, कितनी ऊंची बात है। इस वरदानी भूमि पर हमें नेचुरल बाबा याद आते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि सारे ही स्थान बाबा की यादगार है। अच्छा लग रहा है सबको? हाँ, भक्ति में भी भल लोग रोज पूजा पाठ करते हैं, आरती भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, माना रोज कुछ न कुछ भगवान की याद का पुरुषार्थ करते हैं। फिर भी चातुर्मास में, श्रावण मास में या अधिक मास में लोग विशेष पुरुषार्थ करते हैं। पता है ना माताओं को, हाँ? क्योंकि कहा जाता है कि अधिक मास में भक्ति भजन दान पुण्य यज्ञ होम हवन कर लो, फिर सारा वर्ष भक्ति नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इतना फल मिलता है। तो ये संगम युग की यादगार है। भगवान जब आवे, वो जब कहें, तब हम तपस्या करें, तो इसका फल अनेक गुना मिलता है। भगवान को पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनसे मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने व्रत उपवास करते हैं, कितने तीर्थ यात्राएं करते हैं, कितना हठ दमन करते हैं, नदियों में नहाने जाते हैं, करते हैं ना, वो भगवान आवे और जो कहें वो हम करें, तो उसका फल तो कितना मिलेगा। विभक्ति में बहुत ढूंढा, बहुत कथाओं में गए, शास्त्रों में, क्रियाकांड में, पर महत्वपूर्ण बात तो ये है ना कि भगवान जब आवे तब हम उससे पहचाने और उनकी श्रीमत पर चले। वे आप मुझे बार बार आमंत्रित करो कि आप हमारे सेंटर पर आइए, पर मैं जब आऊं तब आप टाइम ना दें, मेरे साथ आप बैठे नहीं, बात ना करें, तो कैसा लगेगा कि भाई आप तो बार बार बुलाते थे पर जब हम आए तो आपको तो टाइम भी नहीं था। इसलिए बहुत भक्ति की यह अच्छी बात है, पर अब जब भगवान आए हैं तब हम कहां मन लगा रहे हैं, तब हम भगवान को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो अभी है ना कि बाबा जब आते हैं तब हम क्या करते। इसलिए अभी वर्तमान समय ही महत्वपूर्ण है। हर धर्म में तपस्या का महत्व है। हिंदू भाई बहने श्रावण मास, अधिक मास कितना पुरुषार्थ करते, जैनीज भी पर्युषण मास में कितनी तपस्या करते है ना, कितने कठिन व्रत उपवास उनके तो होते हैं। मुस्लिम भाई बहने भी रमजान मास में कितना कठिन उपवास करते हैं, पता है ना, बल रोज भगवान को याद करते हैं, है ना, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पर फिर भी रमजान मास में कितने नियम संयम पालन करते हैं। इवन क्रिश्चियन लोग, उनकी भी गुड फ्राइडे के आसपास 15 दिन तपस्या का होता है। ये संगम युग की यादगार है कि हम रोज बाबा को याद करते हैं, रोज क्लास में जाते हैं, रोज हम कर्म योगी बनकर चलते हैं, परंतु वो रूटीन पुरुषार्थ है, वो हमारी दिनचर्या है, उससे कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं कहे। इसलिए समय निकालकर सभी बातों से फारीग होकर आप सभी पुरुषार्थ के लिए आए, तपस्या के लिए आए। कभी कभी ही ऐसा मौका मिलता है। आप रोज नहाते हैं, खाते हैं, श्रम करते हैं, तो वो कोई विशेष नहीं है ना। आप ऐसे नहीं कहेंगे आज तो मैंने स्नान किया, आज तो मैंने खाना खाया, नहीं, वो रूटीन है। रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज सोते हैं, रोज श्रम करते हैं। अब हमने अपने अस्तित्व को जाना है। पहले तो शरीर को ही जानते थे, तो शरीर की ही दिनचर्या थी। अब हमने अपने आत्मस्वरूप को पहचाना है, तो हमने आत्मा की भी दिनचर्या बनाई। हम रोज योग स्नान करते हैं, है ना, रोज अमृत वेले योग स्नान करते हैं। जैसे स्नान से शरीर शुद्ध होता है, जो भी धूल मिट्टी लगी है वो स्नान करने से साफ हो जाता है, ऐसे हम योग स्नान करते हैं। बाबा की याद से आत्मा शुद्ध बनती है। हम रोज ज्ञान भोजन करते हैं, मुरली सुनते हैं, मन बुद्धि की ये खुराक है, इससे मन और बुद्धि को चिंतन के पॉइंट्स मिलते हैं, बुद्धि में ज्ञान भरेंगे तो ज्ञान का चिंतन चलेगा, ज्ञान नहीं भरेंगे तो कॉमन बातें सोचते रहेंगे, रोज के कामकाज की दुनियावी बातें, तेरी मेरी बातें सोचते रहेंगे। तो ये हमारा रूटीन है, ये कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हमारी जीवन योगी जीवन है, हम ज्ञानी आत्माएं। पर आप सबका अनुभव है कि नौकरी धंधे में, घर कामकाज में, वहां भी टाइम देना पड़ता है, इसलिए अक्सर देखते हैं मुरली क्लास पूरा होते ही माताएं भाई जल्दी जल्दी घर जाते हैं, है ना, दौड़ते हैं, रुक नहीं सकते हैं, इच्छा होते हुए भी विशेष योग नहीं कर सकते, विशेष पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो अपनी जिम्मेवारियां, नौकरी पर जाना, धंधे पर जाना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर का रूटीन कामकाज करना, तो ये विशेष भट्टी का आयोजन किया जाता है। जब खास समय निकाल करके सभी बातों से न्यारे होकर आप यहां आते हैं और बाबा के घर में हम तपस्या कर सके, इसके लिए सब सुविधाएं मिलती हैं। माताओं को कोई खाना बनाना नहीं, तैयार भोजन मिलता है, नहीं तो रोज की चिंता माताओं को क्या बनाएं और टाइम तो लगता ही है, भोजन बनाने में भी 2 घंटे लगाने पड़ते हैं, भाइयों को बिजनेस में जाना, नौकरी पर जाना, अब यहां तो ना नौकरी पर जाना ना घर काम कोई करना। तो हमें खास सुविधाएं दी जाती है, किस लिए? कि हम तपस्या करें, हम अपना बुद्धि योग बाबा से लगाएं। तो ऐसा मौका कितनी बार मिलता है, मधुबन आने का मौका, तपस्या के लिए आने का मौका कितनी बार मिला? हाँ, पहली बार बहुत कम मौका मिलता है, इसलिए जब मौका मिले तो अच्छी तरह से बुद्धि सभी बातों से निकाल कर बाबा में लगाना है। घर तो याद नहीं आता ना माताएं, सभी माताओं के हाथ नहीं उठे हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आता होगा इसलिए नहीं उठाया और भाइयों को नौकरी धंधा तो याद नहीं आता कि चलो भाई 3 दिन का मौका है। अच्छी तरह बुद्धि बाबा से लगाएं, बाबा से बातचीत करें, नहीं तो कई बार ब्राह्मण बनने के बाद भी अफसोस रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छी तरह योग करें, फुर्सत नहीं रहती। अच्छी तरह मुरलियों का अध्ययन करें, मूल सत्य ज्ञान, भगवान वाच, पर उसको अच्छी तरह स्टडी करने का टाइम नहीं। वो जरूरी है, जितना ज्ञान अच्छी तरह समझेंगे उतना योग भी गहरा लगा सकेंगे। ज्ञान की गहराई होगी तो माया की भी परख रहेगी और माया जीत बनने का पुरुषार्थ चलेगा। तपस्या क्या करनी है? तपस्या के लिए आए हैं ना, तपस्या क्या करनी है? क्या करनी है? तपस्या में क्या करना है? वो तो उपवास करते हैं, निर्जला रखेंगे, तो क्या करना है उसके लिए, करना क्या है? तो हमारी पहली तपस्या है आत्माभिमानी बनना। देहभान में आए इसलिए वियोगी बन गए, भगवान से बुद्धि टूट गई, क्योंकि देह भान में आने के कारण देह संबंधों में, दुनियावी वैभव में, दुनियावी प्रवृत्ति में बुद्धि चली गई। क्योंकि जब हम अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, आत्म विस्मृत हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक बुद्धि देह दुनिया संबंध वस्तुओं में लग गई। क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा संसार के संपर्क में आते, इसलिए कहते हैं ना कि आप मुए मर गई दुनिया। हमने शरीर छोड़ा माना हमारा संसार समाप्त हो गया, नया शरीर लेते हैं नया संसार शुरू होता। तो आत्मा शरीर द्वारा दुनिया के संपर्क में आती है, इसलिए देह भान में आते ही दुनिया के चिंतन में बुद्धि लग जाती है। अक्सर वही कहते हैं ना भक्ति में भी कि भगवान की याद में बैठते हैं पर मन भटक जाता है, दुनियावी बातों में चला जाता है, क्योंकि ये कनेक्शन है। जैसे ही देह भान में आते हैं तो दुनिया से बुद्धि अटैच हो जाती है। इसलिए हम बार बार अभ्यास करते हैं कि मैं ये नहीं हूं। जो देखने में आ रहा है वो शरीर मैं नहीं, मैं तो शरीर से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा। तो अपने को बार बार देह में रहते हुए देह भान से डिटैच करना। मुरली में भी बाबा बताते हैं ना कि कान द्वारा सुनता हूं, आंख द्वारा देखता हूं, अनेक जन्मों से खुद को देह समझते रहे, देह भान में जीवन जीते रहे, इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम हैं आत्मा, आत्मभान नेचुरल होना चाहिए, पर नेचुरल क्या हो गया है, देह भान नेचुरल हो गया, वो गलत है। इसलिए बाबा कि जीवन कहानी में भी आपने सुना होगा कि बाबा भी शुरू में अभ्यास करते थे। बाबा की धर्म पत्नी, बाबा लिखते थे, अभ्यास करते थे कि यशोदा आत्मा है। बाबा की युगल का नाम यशोदा था, नारायण आत्मा है, वो बाबा का बेटा था। राधिका आत्मा है, बाबा की पुत्रवधु थी। व्यक्ति देह संबंधों से ही अटैच होता है ना, तो बाबा ये प्रैक्टिस करते थे। आप भी लिखो डायरी में, अपने परिवार का लिखो, उनके नाम से लिखो, माताजी आत्मा है, पिताजी आत्मा है, भाई का नाम लिखो कि ये भी आत्मा है। हर मुरली में रोज अनेक बार ये पाठ बाबा पक्का करा, क्योंकि जब तक आत्माभिमानी नहीं बनेंगे बाबा से योग नहीं लगेगा। क्योंकि बाबा आत्माओं का पिता है, शरीर का पिता नहीं। शरीर समझेंगे तो बाबा से योग नहीं लगेगा, देह समझेंगे तो देहधारियों से ही बुद्धि लगेगी। शिव बाबा आत्माओं का पिता है, इसलिए हमें ये पाठ पक्का करना है। क्यों बाबा रोज आत्मस्मृति दिलाते हैं, रोज आत्मचिंतन का अभ्यास कराते हैं। देह भान से न्यारे होंगे तो बुद्धि इस दुनिया से ऊपर उठेगी, बाबा से जुड़ेगी। तो हमारी पहली तपस्या है आत्मभिमानी बनना, ये फाउंडेशन है। आत्मभिमान की तपस्या कच्ची है तो दृष्टि वृत्ति शुद्ध नहीं बनेगी। बाबा कहते हैं ना कि हरेक को देखो तो मस्तक में देखो, आत्मस्मृति आनी चाहिए। हम महसूस करें शरीर से अलग है, ये बार बार महसूस करना है कि इस शरीर रूपी गुफा में मैं आत्मा, मस्तक आसन पर विराजमान योगी आत्मा, गुफा अलग है, दीवा अलग है, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग है। इतनी आत्मस्मृति में रहे जो हमें कोई देखे और आत्मा दिखाई दे। जिस कॉन्शियसनेस में आप अधिक रहेंगे वही दूसरे को दिखाई पड़ेगा। कहीं आप बैठे हैं पर कंफर्टेबल नहीं हैं, तो बार बार बुद्धि उसमें जाएगी, दिखाई पड़ेगा कि ये कंफर्टेबल नहीं है। व्यक्ति जहां कॉन्शियस होता है वही दिखाई देता है। हम सोल कॉन्शियस बने, हमारा अटेंशन आत्मस्वरूप पर हो तो देखने वाले की बुद्धि भी आत्मा की तरफ रहेगी। अगर हमारी बुद्धि देह में है, ये मेकअप मैंने किया है, ये ड्रेस पहने हैं, कॉन्शियस तो हो ही जाते हैं ना, नए कपड़े पहनते हैं तो उस दिन हम चार बार आईने में देखते कॉन्शियस हो जाते हैं ना। अगर हम बॉडी कॉन्शियस है तो दूसरे को भी देह में ही बुद्धि जाएगी हमारे। इसलिए देहभान से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी। रोज अपने शुद्ध सत्य आत्मस्वरूप को महसूस करें। हमारी दूसरी तपस्या है एक बाबा में मन लगाना, शांति से बैठकर अपने आप से बात करनी है और ये फैसला करना है कि मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये मजबूत निर्णय चाहिए। एक भक्तिन मीराबाई भी कितना दृढ़ निर्णय था कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। उनको तो सत्य ज्ञान भी नहीं था, हमें तो बाबा का सही परिचय है, संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें मिला है और जन्म जन्मांतर के अनुभव है कि देहभान में रहने से कोई फायदा नहीं, आत्मा की उतरती कला ही होती है। तो ये हमारा जिगरी निर्णय हो, औरों से बुद्धि योग हट जाए कि बाबा की याद ही मुझे आत्मा को पावन बनाने वाली है, शक्तिशाली बनाने वाली। बिना जिगरी प्यार योग नहीं लग सकता है। इसलिए एक बाबा, दूजा न कोई। हमारी तीसरी तपस्या है, भल हम शरीर से इस दुनिया में हैं पर मन और बुद्धि से सदा अपने असली वतन परम धाम में रहे। इन आंखों से ये दुनिया देखते हैं पर मन की आंख से सदा असली घर को देखो, क्योंकि अब ड्रामा पूरा हुआ, अब हमें वापस घर जाना है। पता है ना सबको, प्रोग्राम मिला है बाबा के तरफ से, हाँ, कि अब वापस घर जाना है। जहां जाना होता है वहां बुद्धि लगती है ना, हाँ? मधु बनाना था तो बुद्धि कहां लगी थी, हाँ? हफ्ते पहले से मधु बन जाना। जिसके साथ जाना उसके साथ बुद्धि लगती, पूछते हो ना, दीदी मेरे को किसके साथ जाना है, कहां मेरी सीट है, हमारे कंपार्टमेंट में कौन कौन होंगे। जहां जाना जिसके साथ जाना उससे बुद्धि लगानी। तो कहां जाना है, नाटक पूरा हुआ, ऑडियंस जाएगा ना, हाँ, थिएटर खाली करेंगे ना। तो बाबा ने हम बच्चों को प्रोग्राम दिया और किसके साथ जाना है, बाबा के साथ। वैसे तो कहते हैं अकेले आए हैं अकेले जाना है, पर हम अकेले आए बाबा के साथ जाएंगे, तो जाने का डर नहीं है। अकेला शब्द सुनते हैं तो डरते हैं, पर हमें बाबा के साथ जाना है। तो भल शरीर से यहां है, मन और बुद्धि से परम धाम में, उस पवित्र शुद्ध सत्य स्थिति में स्थित होकर जाना। हमारी चौथी तपस्या है, हमें बाबा ने श्रीमत दी है उसका पालन करना है। तपस्या में नियम संयम अपनाते हैं ना, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, तपस्या में संयम होता है, कंट्रोल होता है। हम समझ पूर्वक संयम नियम का पालन करते, यहां कोई जबरदस्ती नहीं है, हठ दमन की बात नहीं है, परंतु बाबा हमें रोज समझाते हैं, समझ कर हमें संयम धारण करना। बाबा कहते अब जो कुछ हो गया वो तो ड्रामा, फुल पॉइंट लगाओ। कहा है ना बाबा ने, जो बीत गई सो बात गई, पास्ट इज पास्ट। ज्ञान नहीं था, भूले की पाप किए, गलत संस्कार बने, परंतु बाबा ने माफ किया कि जो हो गया सो ड्रामा। बार बार सोचना नहीं है उसके बारे में, परंतु अब गफलत नहीं करना, अब गफलत नहीं करनी, अब कोई भूले पाप नहीं करना। जिसके लिए बाबा कहते मन सामे कितने भी तूफान आए, माया के विचार आवे, पर कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना। बाबा सबसे पहले कर्म में विजयी बनाते हैं कि कर्मेंद्रिय से पाप नहीं होना चाहिए। मन में गुस्सा आता है पर मुख से अपशब्द, गाली ग्लानी, निंदा नहीं निकलनी चाहिए, अपमान नहीं करना है किसी का। कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना, ये पहली धारणा है। अब तो समय अनुसार बाबा कहते मन में भी बुरे विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि अब अंत का समय है। मनसा में भी तूफान क्यों आए, इसलिए बाबा के सच्चे बच्चे हैं हम, ज्ञानी तो आत्मा है। कोई अनजाने से भूल करे तो लोग माफ करते हैं कि चलो भाई बेचारे को पता ही नहीं था, है ना, माफ कर देते हैं। परंतु ज्ञानी तो आत्मा बनकर, जान करके भी अगर हम भूलें करते हैं, अवज्ञा करते हैं, जो बाबा कहते वो नहीं करते हैं, तो टीका होती है, वो माफ नहीं होता है। और बार बार करेंगे तो सजा के पात्र बनते हैं। तो हमें रोज याद रहे कि हम सत्य ज्ञानी आत्मा है। कौन से ज्ञानी हैं हम? परमात्मा ज्ञानी आत्मा है। सिर्फ कथा कहानियां नहीं सुनते हैं हम तो रोज सत्य ज्ञान सुनते हैं, ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। भगवान जिसको रोज पढ़ाते हो वो विद्यार्थी कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? भगवान जैसे ज्ञानी आत्मा होने चाहिए। हम डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्मा है। हम कोई महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा से योग लगाने वाले नहीं हैं। हमारा योग डायरेक्ट बाबा से है। तो ऐसी सत्य ज्ञानी आत्मा, डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्मा, प्रैक्टिकल कितनी ऊंची पवित्र होनी चाहिए। इसलिए कर्मेंद्रिय से कोई नए पाप नहीं करने, नहीं तो बाबा कहते हैं ना कि 100 गुना हिसाब। दुनिया में भी कहते हैं ना भाई ये अनपढ़ है, तुम इतने पढ़े लिखे होकर तुमने ऐसा क्यों किया? तो हमारा अपना अपने ऊपर इतना कंट्रोल हो, कोई भूल ना हो, ईश्वरीय नियम मर्यादा के विपरीत कोई काम ना, नहीं तो पाप जो है वो आत्मा को भारी कर देता है, पत्थर बना देता है। प्रैक्टिकली भी हम कितने ऊंचे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े, कोई सामान्य संस्था नहीं है। आज ब्रह्मा कुमारीज को कितनी ऊंची नजर से देखते हैं कि यहां बहुत ऊंची धारणाएं हैं इन लोगों की। विश्वव्यापी ज्ञान यज्ञ से हम जुड़े हैं, तो जितना ऊंचा बाबा है, जितना ऊंचा सत्य ज्ञान है, जितने ऊंची विश्वविद्यालय है। आज भी बाबा ने कहा ना, ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, तो हमें भी कितना ऊंचा होना चाहिए। हमारे कर्म साधारण नहीं होने चाहिए। आज आपको लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये ओम शांति वाले, ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, ये शिव बाबा वाले। तो अब हम व्यक्ति नहीं हैं, अब हम यज्ञ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। लोग हमें देखकर विद्यालय की बात करते हैं, तो हम संस्था है, हम यज्ञ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे मैनर्स भी वही होने चाहिए। तो ये भी एक पांचवी प्रैक्टिकल तपस्या कि हमें यज्ञ के नियम मर्यादा आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट जो इस विद्यालय का है, हमें उस अनुसार चलना है। क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञानी तो उसको ही कहेंगे। ये तपस्या है कि कुछ भी हो जाए, हम चलित ना हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर नहीं, हमें श्रीमत अनुसार, ज्ञान अनुसार, हमारे विद्यालय के नीति नियम अनुसार ही व्यवहार करना है। नहीं तो लोग भी जानते हैं ना हमारे नीति नियम क्या है, उनको पता है, वल वे गुस्सा करते हैं, पर वो हमें भी सावधान करते हैं कि आप क्यों गुस्सा करते हैं, आप तो ओम शांति वाले हैं ना। वो भल गुस्से करते रहे, पर वो हमारे लिए समझेंगे कि इनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत नियम मर्यादा वाले होते हैं। इसलिए हम आत्म स्मृति के अभ्यास से शुरू होते हैं आत्मभिमानी बनने के पुरुषार्थ को शुरू करते हैं। और यथार्थ आत्मभिमानी माना, बाबा कहते हैं ना, कोई देह का आकर्षण नहीं, जिसको भी देखे आत्मदृष्टि से देखे, देह दृष्टि से नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखे, कोई भी जाति पाति के भेदभाव हमारी बुद्धि में नहीं होना चाहिए। कहीं रोज क्लास करते हैं पर घर में ही भेदभाव रखते हैं, ये बेटी है ये बहू है, ये बच्चा है ये बेटी है, घर में ही भेदभाव रखते हैं, तो आत्मभिमानी कहां हुए। हर एक आत्मा है, शरीर से कोई स्त्री है शरीर से कोई पुरुष है, पर हैं हम आत्मा। तो प्रैक्टिकल ये दृष्टि रह दीजिए, कहीं जाति पाति के भी भेदभाव रखते नहीं, गरीब है नौकर है बच्चा है स्त्री है कोई भी है, आत्मा की दृष्टि से व्यवहार करना। नहीं तो बॉडी कॉन्शियस कहेंगे ना, देहभान के कारण ही जाति ज्ञाति कुल के हिसाब रखते हैं। प्रैक्टिकल आत्मभिमानी मीन्स आत्मा के गुणों में स्थित होकर कर्म करना, सिर्फ स्मृति नहीं सिर्फ चिंतन नहीं, आत्मा के गुणधर्म में स्थित होकर व्यवहार करना, वो है आत्मभिमानी की स्थिति। और हरेक को पता है ना कि मुझ आत्मा के असली गुण कौन से हैं। हमारे मूल सात गुण धर्म है, माना मुझे हर कर्म शांति से शुद्धि से ज्ञान स्वरूप बन पवित्र स्वरूप बन खुशी आनंद सुख की अनुभूति से करना। मेरा ओरिजिनल स्वरूप ये है। क्यों हम रोज योग में साइलेंस में बैठकर हम खुद को रिवाइज कराते हैं। जिनको खुद रियलाइजेशन नहीं है उनको दूसरे फिर याद कराते हैं कि भाई ओम शांति धीरे से बोलो, क्योंकि खुद को याद नहीं कराते हैं ना। हमें रोज सभी बातों से फारिग होकर अपने आत्मधर्म में स्थित होना है और खुद को याद कराना है कि मेरी ओरिजिनल नेचर शांति, मैं शांत आत्मा। देहभान में आते हैं तो गुस्सा आ जाता है, इसलिए हम खुद को पक्का कराते हैं। ये भूल गए इसलिए तो कहने लगे ना कि मेरा स्वभाव ही गुस्सेल है। बाबा कहते तुम्हारी नेचर गुस्से की नहीं है, तुम्हारी ओरिजिनल नेचर तो शांति की, हमें शांति अच्छी लगती है ना, वो हमारी ओरिजिनल नेचर है। तो रोज खुद को रिवाइज कराएंगे रियलाइज कराएंगे तो समय पर कंट्रोल रहेगा। कई कहते हैं ना, वैसे तो मैं शांति से ही बात करती हूं पर उसने बोला ऐसा ना तो गुस्सा आ गया, क्यों आ गया। समय पर शांति का गुण क्यों धारण नहीं रहा। कोई कहे कि वैसे तो मेरे पर्स में मेरी बीमारी की दवाई रहती ही है पर जब बीमार हो जाती हूं तो दवा गुम हो जाती, तो क्या फायदा। समय जब ऐसा हो तब गुस्सा ना आए तो कहेंगे आत्मभिमानी। तो समय पर तब याद रहेगा जब बार 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 याद करने का अभ्यास करेंगे। तो हमें सिर्फ रिपीट नहीं करना है। कई कहते हैं 5 मिनट में योग पूरा हो जाता है, क्या करूं, क्योंकि वो रिपीट करते हैं। सिर्फ महसूस करना है और रिवाइज करना है, पुनरावर्तन करना है। बाबा कहते इतना आत्मस्मृति रहे कि दूसरे को भी आत्मा दिखाई दे। दूर से रात के अंधेरे में मोटर आती है तो क्या दिखाई देता है? 2 फोकस ही दिखाई देते, मोटर नहीं दिखाई देती, उनकी लाइट दिखाई देती। साधारण शरीर छिप जाए, ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई दे। इतना निरंतर अभ्यास हमें करना है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई दे। गुप्त आत्मा प्रत्यक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष शरीर छिप जाए। जितना आत्मभिमानी स्थिति की साधना पक्की है तो दृष्टि वृत्ति संस्कार भी हम बदल सके। अगर ये साधना कच्ची है तो संस्कार नहीं बदलते। जितना अच्छा अभ्यास हम करते हैं तो हमें बार बार मन करता है ना कि साइलेंस में बैठकर अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को अनुभव करें। इस अभ्यास में कितना आनंद मिलता है। तब तो भक्ति में भी गाया है निजानंद, अपने स्वरूप में आनंद, आत्मानंद कहते हैं, स्वरूपानंद कहते हैं। हमें अपने शुद्ध स्वरूप की स्मृति में आनंद, क्योंकि आत्मा ओरिजिनली आनंद स्वरूप है, सत्चित आनंद स्वरूप है। तो जैसे ही हम साइलेंस में बैठते हैं हम अपने आंतरिक आत्मस्वरूप से जुड़ते हैं। बाबा रोज बार बार ये पाठ पक्का कराते हैं। कई समझते हैं कि ये कॉमन पॉइंट है, इसलिए बाबा रोज वही बातें बताते रहते हैं। मुरली की कोई पॉइंट पूछे और कुछ याद नहीं होगा तो क्या बताएंगे कि आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझकर बाप को याद कर, क्योंकि पता है कि बाबा रोज ही ये कहते हैं। तो कहीं समझते हैं बाबा तो साधारण पॉइंट बताते हैं, नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बार बार बाबा बताते है ना। जब तक वो स्थिति ना बने, होता है ना, एक्टर एक्शन करता है पर जब तक एक्यूरेट एक्शन नहीं करेगा तो कहते हैं ना फिर से रिटेक, फिर से। तो जब तक हम प्रैक्टिकल आत्मभिमानी नहीं बनते तो फिर बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे फिर से अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करो, क्योंकि योग की पहली शर्त है डिटैचमेंट। योग तो तभी लगेगा ना जब यहां से डिटैच होंगे। न्यारा, सबसे न्यारा आत्मा का अविनाशी संबंधी एक परमात्मा है। हमारा आपस में संबंध नहीं है, हम तो ड्रामा के सह पात्रधारी है। वे इस दृश्य में ये पांच लोग हैं, है ना, हम को एक्टर्स है। आत्मा का सच्चा अविनाशी साथी परमात्मा है। तो हमें अपने आप को न्यारा करना है। एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे जो विद्यार्थियों के आंदोलन में उनको जेल जाना पड़ा। वो विद्यालय के संपर्क में भी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर विद्यार्थियों का कोई आंदोलन था उसमें उनको जेल में जाना हुआ। जब वो वापस आए तो हमने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा, क्या ऐसी सजा दी गई जो आपको महसूस हुआ कि मेरी इस भूल की सजा। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई सजा नहीं मिली, हमें राजद्वारी जेल में रखा गया था जहां सब सुविधाएं थी, पर सब कुछ होने के बाद भी हमें बार बार ये महसूस हुआ, दिल खाता रहा कि यहां सब कुछ है पर मेरा अपना कोई नहीं। ये फीलिंग मैं समझता हूं कि सजा के समान। तो हमारी भी शरीर से सबसे ज्यादा अटैचमेंट कहां होता है? शरीर से। तो बाबा कहते वहां से ही अपने आप को न्यारा कर। इसलिए रोज बाबा प्रैक्टिस कराते हैं कि मैं शरीर से अलग हूं, यहां से डिटैच होंगे तो बाबा से अटैच हो सकेंगे। तो ये अंदर की एक अवेयरनेस है, जागृति है, और एक स्पेशल अटेंशन है कि हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हैं परंतु हर क्षण शरीर से हम अलग हैं। अगर हमें योगी बनना है ना, सबको स्पष्ट है ना कि हम योगी हैं, हम भोगी नहीं हैं, हमने जीवन के लिए योग मार्ग चुना है। भोगी थे, भक्ति में वियोगी थे, परंतु अब हम योगी आत्माएं। हमें ये याद रहे, इसलिए हमारा
बार बार ये अभ्यास है। बाबा कहते हैं ना, अब वापस घर जाना है, शरीर छोड़कर अशरीरी बनकर जाना है, तो जीते जी बाबा ये प्रैक्टिस कराते हैं। तो प्रैक्टिकल हमें शरीर छोड़ना मुश्किल नहीं लगेगा, बाबा जीते जी ये प्रैक्टिस कराते हैं। तो मधुबन में आप सब आए हैं, टाइम निकाल कर आए हैं, देखना तो वही चीजें हैं, एक बार देख ली है ना सबने, हाँ, परंतु मधुबन जैसा पवित्र वातावरण, योगयुक्त वातावरण, शांत एकांत का वातावरण अभ्यास के लिए है। बाबा ने मधुबन क्यों बनाया? ताकि हम झंझटों से निकलकर शांत एकांत वातावरण में रहें, बैठें और प्रैक्टिस करें। लक्ष्य रखना है, जिस अर्थ से बाबा ने मधुबन बनाया है, बाबा ने बीच में भी एक मुरली में कहा था कि तुम बच्चे यहां क्यों आते हो? रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। तो मधुबन आते ही विश्राम मिलता है ना? क्योंकि बाबा सभी बातों से फारिग करते हैं। आपके लिए कोई भोजन बना रहा है, आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो आराम से रहे। बाप दादा का घर सो, हम बच्चों का घर। लौकिक में भी माताएं जाती है ना पियर घर भाई क्यों जाते हैं? आराम से रहेंगे। यहां तो खुद पर सारी जवाबदारियां हैं, बच्चे भी जाते हैं मामा के घर, नानी के घर, दादा के घर, आराम से खाएंगे खेलेंगे। तो यहां भी कोई झंझट नहीं, विश्राम मिलता है और रिफ्रेश, तरोताजा बनने के लिए। जो ज्ञान योग का पुरुषार्थ जीवन के लिए स्वीकार किया है, कोई भी पूछते हैं कब तक आप ब्रह्मा कुमारी में जाते रहेंगे, तो क्या कहते हैं? हाँ, जहां तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। हमने लाइफ के लिए ये स्वीकार किया है, तो हमारा उमंग, उत्साह, हिम्मत बराबर होना चाहिए, कमजोर नहीं होना है। धीरे 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 कमजोर हो जाते हैं ना, ढीले पड़ जाते हैं, तो मधुबन आते हैं फिर से चार्ज होने के लिए, कि अपने आप को रिचार्ज करना है। और आजकल तो सबको ये अटेंशन है, मोबाइल को रोज कितना ध्यान से रिचार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, और सब बातें भूल जाएगी पर मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलता है, सब याद रहता है, टाइम निकाल करके रिचार्ज करते हैं। तो खुद को भी रिचार्ज करना है। स्पिरिचुअली बाबा हमें ज्ञान योग के नई नई बातें सुनाकर रिचार्ज करते हैं। जब यही क्षेत्र लाइफ के लिए चुना है, तो हमारा पूरा इंटरेस्ट, पूरा अटेंशन ज्ञान योग की बातों पर रहे। कोरोना के समय मिला ना टाइम सबको, क्या किया, रिचार्ज किया था, फुर्सत ही फुर्सत थी ना, सोचते थे पहले कि टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है, योग करने का टाइम ही नहीं मिलता है, अब टाइम ही टाइम मिला तो योग लगा, देखा होगा ना अपने आप को, ड्रामा तो कंपलसरी सिचुएशन लाता है ना, बाबा के साथ नाज नखरे करते हैं, बाबा कहेंगे तो भी थोड़ा मानेंगे नहीं मानेंगे, पर ड्रामा के आगे कुछ चली किसी की, कंपलसरी लॉक हो गए। ज्ञान होने के कारण हम सभी ने टाइम वेस्ट नहीं किया, सफल किया, योग का अभ्यास बढ़ाया, मुरली का अध्ययन बढ़ाया, मनसा सेवा भी की, तो अपने आप को देखा होगा ना कि हम कहां तक पहुंचे, क्या हमारी स्थिति है, टाइम मिला अभ्यास करने भी बैठे पर एकाग्र नहीं हो पाए, क्यों, क्योंकि वैराग्य नहीं, बाबा से सच्चा गहरा प्यार नहीं। आज बाबा ने कहा ना, तपस्या माना क्या, वो तो तपस्या करेंगे तो वाइब्रेशंस फैलेंगे, पर तपस्या माना बाबा में लवलीन हो जाना, बाबा के ज्ञान गुण की स्मृति में मगन हो जाना, वो तपस्या, बाबा से इतना प्यार कि बुद्धि बाबा से ही लगी रहे। इसलिए मैं कई बार सोचती हूं कि सत्य पाने के लिए भक्ति में मेहनत कितनी की, अब सत्य मिल चुका है तो बुद्धि कहां है, है ना, तो अपने आप से बात करो, सन्मुख बाबा आए हैं, पहले एक ड्रामा करते थे ना, स्वर्ग में एक सीट खाली है, तो भगवान के सामने वो बूढ़ी माता को लाते हैं तो भी वो बूढ़ी माता राम 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 ऐसे कर रही है, अरे अब तो सन्मुख भगवान है ना, वहां मन लगाना, तो बाबा सन्मुख आए हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अब बुद्धि कहां है, क्यों नहीं लगती है, अपने आप से बात करो, लगानी ही है क्योंकि उसी में कल्याण, तो ये खुद से बात करने का मौका है, बाबा से बात करने का मौका है। तीन मिनट अभ्यास करेंगे, दो मिनट खड़े हो जाइए, हाथ पांव ठीक कर लीजिए, तीन अभ्यास करेंगे, पहले पांच तत्वों के बने शरीर से मैं आत्मा अलग हूं।
मैं आत्मा शक्ति हूं, ज्योति बिंदु हूं। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूं। महसूस करिए, मैं शरीर में होते हुए शरीर से अलग हूं। मस्तक के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान मैं योगी आत्मा, राइट साइड घूम जाइए, मैं आत्मा दिव्य ज्योति बिंदु अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप। मैं इन कर्मेंद्रियों के राजा इस शरीर की मालिका हूं। मैं शुद्ध प्रबुद्ध हूं, जैसे ही मैं अपने को आत्मा समझती हूं, मेरा मन शांत हो जाता है, मैं अंतर्मुखी बन जाती हूं। मेरा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है, बाबा के सामने हो जाइए, लेफ्ट साइड घूम जाइए, मैं स्वयं में मस्त हूं, मेरा अपना स्वरूप दिव्य है, मेरा असली घर परम धाम है। मैं इस शरीर में इसलिए हूं कि मैं बाबा को याद कर सकूं,
मैं इस दुनिया में इसलिए हूं कि मैं सेवा कर सकूं। बाकी मेरा देह से और दुनिया से और कोई रस नहीं है। मुझे निरंतर बाबा को याद करना है, सेवा करना। बाबा के सामने हो जाए, बैठ जाए, ओम शांति। ओम शांति। तो तपस्या का फाउंडेशन पक्का कराया दीदी ने, उसके लिए दीदी का एक हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं।